उपयोग लक्षण चेंज भी हो सकते हैं है अंगी पंचेंद्रीय है ना चलिए एक बार मंगलाचरण बोले मुख्य मार्ग वंदे सत्वार सूत्र महान शास्त्र दूसरा अध्याय और थोड़ी देर पहले हमें दूसरे अध्याय के 30 सूत्रों के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं और अभी हमें 1 घंटे में इस अध्याय को पूरा करना है। चर्चा कुछ पारिणामिक भाव के संदर्भ में भी चली पिछले सेशन में, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पारिणामिक भाव जीव मात्र में है, जीव मात्र। अब वो जीव मात्र का मतलब एक इंद्रिय भी, निगोबिया भी, ये झाड़ पीछे पहाड़ पेड़ जो खड़े हैं, इनमें भी पारिणामिक भाव है। अभी हम भोजन करते समय चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि भाई इसलिए कह रहे हैं हम, इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि आप यदि निगोद में भी चले गए तो आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई कमी नहीं हुई। नरक में गए तो कुछ कमी नहीं आ गई, एक इंद्रिय विकलत्रय दशाओं के अंदर रहे तो कुछ कमी नहीं आ गई। जैसा पारिणामिक भाव अभी है वैसा पारिणामिक भाव वहां भी था, जैसा पारिणामिक भाव सिद्ध भगवान के होता है वैसा पारिणामिक भाव हमारे भी है। क्या पारिणामिक भाव में कोई अंतर नहीं है, पारिणामिक भाव में कोई फर्क नहीं है, सबके पारिणामिक भाव एक जैसा होता है। पारिणामिक भाव देखो, ये जो कथन हम करते हैं, जो निगोद में तोई मुझ में तोई मोक्ष मझार, क्या है पारिणामिक भाव? पारिणामिक भाव मतलब द्रव्य स्वभाव। पारिणामिक भाव मतलब ऐसा स्वभाव जो स्वभाव सब में एक जैसा होता है, उसका नाम पारिणामिक भाव। तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भोजन हो गया सबका? हाँ पूछ लो सर। कोई फर्क नहीं, तो फिर क्यों शब्द दो हैं? इसलिए है कि पारिणामिक भाव से अलग दिखाने के लिए परम पारिणामिक कह दिया जाता है। तो आप क्यों दिखाना चाहते हो? क्योंकि पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में होता है, पुद्गल में भी पारिणामिक भाव है। पुद्गल का पुद्गलत्व, पुद्गल का पुद्गलपना, पुद्गल अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ेगा, अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका पारिणामिक भाव है। तो उससे भिन्न कर बताने के लिए, चेतन को भिन्न बताने के लिए परम पारिणामिक। आप कर लीजिएगा नोट कुछ करना हो तो, मैंने पारिणामिक भाव सबने और परम पारिणामिक भाव जी। लेकिन यहाँ तो पारिणामिक ही क्या है, एक ही बात। तो 30 हो गए थे, 30वें सूत्र में हमने आहार की चर्चा करते हुए आहार के लिए ब्रेक दे दिया था। चलो कोई बात नहीं, अब क्या हुआ बात चालू हुई थी विग्रह गति से, यहाँ से मरे, रास्ते में गए विग्रह गति में, फिर एक समय, दो समय, तीन समय तक लगे, अनाहारक भी रहा, फिर आहारक भी हो गया, फिर वहां जाकर के क्या हो गया, जन्म, यहाँ से गया वहां जाके जन्म हो गया। तो जन्म की चर्चा है 31 नंबर सूत्र, समूचन गर्भोत्पादा जन्म, समूचन गर्भोत्पादा जन्म, जन्म के तीन भेद होते हैं, जन्म तीन प्रकार के होते हैं, एक समूचन, एक गर्भ और एक उत्पाद। संसार में जन्म तीन प्रकार के होते हैं, जन्म के तीन प्रकार हैं। एक प्रकार लिखा यहाँ समूचन, समूचन, समूचन पहला शब्द, फिर गर्भ और फिर मात्रा लग रही है उपपाद, उपपाद, समूचन, गर्भ और उपपाद, उपपाद, ये सब क्या है, जन्म, जन्म के तीन भेद है। यहाँ नहीं समझाता मैं तो समझा भी सकता हूँ यहीं से, चलो समझ लो। गर्भ जन्म वाले तो सब जानते ही हैं, गर्भ से जिनका जन्म होता है, क्षत्रिय सब दिखते हैं, सब गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, गर्भज, आगे आएगी चर्चा, आगे बताएंगे, गर्भ से जन्म लेने वाले गर्भ। एक उत्पाद, देखो तीन जन, समूचन, गर्भ और उत्पाद। तो समूचन अभी छोड़ो, पहले समझो गर्भ, गर्भ से जिनका जन्म होता है वो सब गर्भ जन्म वाले। तो उत्पाद आगे आएगा सूत्र, देव नार का नाम उत्पाद है, देवों का और नारकियों का आगे आएगी चर्चा, दो तीन सूत्र छोड़ करके 34 में है, देव नारकाणाम उत्पाद है, देवों और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। गर्भ जन्म सबके समझ में आता है कैसा होता है, लेकिन उत्पाद जन्म में लेते हुए पैदा होते, सोते सोते पैदा होते देव लोग, नारकी रोते रोते पैदा होते। लेकिन विशेषता यह है कि उत्पाद जन्म वाले जवान ही पैदा होते हैं, बचपन नहीं होता, छोटे से बड़े नहीं होते, बड़े ही पैदा होते हैं, देव भी और नारकी भी। देवों का भी ऐसा ही जन्म होता है और नारकियों का भी ऐसा ही जन्म होता है। देव नहीं नहीं युगली तो जन्म गर्भ जन्म है, अपने से अपने जैसे जन्म होते हैं, मनुष्य है ना, मनुष्य गति के जीव है, ये पूछ रहे युगलिया वो घूमने वालों के लिए, मनुष्य गति के जीव गर्भ जन्म होता है उनका। तो देव लोग क्या होता है, उनके वहां देव गति में स्पेशल जगह बनी हुई होती है, जिनको गर्भगृह कह देते हैं या उत्पाद केंद्र कह देते हैं, ऐसे वहां उत्पाद शैयाएं होती है ऐसे, और उन पर एकदम जैसे यहाँ से कोई जीव पहुंचा, वहां जीव पहुंचा अभी तो वहां ऐसा लेटा हुआ और ऐसे लेट करके ऐसे जैसे उठते हैं कोई व्यक्ति, सो करके उठते हैं, ऐसे देवों का जन्म होता है देव गति के जीवों में। सब जवान होते, जवान ही जन्म होता है, बूढ़े भी नहीं होते, बचपन भी नहीं है और बुढ़ापा भी नहीं है, जवान ही है, ठीक है। देवगति में नारकियों में भी ऐसा ही होता है, उनका उत्पाद जन्म हो गया ये। तो दो जन्म समझ में आ गए, एक गर्भ जन्म और एक उत्पाद जन्म। एक सबसे पहला है समूचन, ये समूचन जन्म ना तो गर्भ से होता है और न उत्पाद जन्म है। अब तीसरा क्या हुआ कि बाहरी वातावरण से उद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जिनके शरीर की संरचना बन जाती है, ये समूचन जन्म वाले होते हैं बिना माता पिता के, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से समूचन ही होते हैं। बेटा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल गई, एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक के सभी जीव नियम से कैसे होते हैं? अमूर्छन होते हैं, माता पिता नहीं होते। इसका मतलब ये जो समझ लीजिए आप स्पाइडर वगैरह हैं या ये जो मच्छर हैं, इनमें नर मादा नहीं होते क्या? आइंस तो कहती है, वैज्ञानिक लोग तो मानते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो संपोषण होते हैं, गर्भ से जन्म नहीं होता, चींटी में भी नहीं होते। वो जो अंडे से दिखते हैं ना, वो चींटियों के अंडे नहीं होते। अंडे जिनके होंगे वो सब जीव गर्भ जन्म वाले होंगे। देखो अभी समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समूर्छन समझ में आया क्या? वातावरण से माने समूर्छन में ऐसे होते हैं। देखो आप कभी कभी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा लाइट जल रही है, रोड लाइट, और कुछ भी नहीं है, कोई जीव नहीं है वहाँ, और एकदम सडनली वहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में एकदम मच्छर आ गए। ये क्या हुआ? ये कहाँ से आ गए? बस अपने आप ही पैदा हो गए वहाँ, तुरंत ही पैदा हो जाते। ये बिच्छू कंचले हैं, चींटियां हैं, मच्छी मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब अपने आप पैदा हो जाते गंदगी से। आपके सर में जुए हैं क्या? अब आपको तो ऐसा लगता है कि किसी जूम वाले के साथ में बैठे हो तो उसकी चढ़ गई, ऐसा नहीं है। वो किसी की चढ़ती हो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे ही सर में पैदा हुई है, डायरेक्ट ही पैदा हो गई। तो कहां से पैदा हो गई जब पहले नहीं थी? तब वातावरण से, गंदगी से, मरणता से। और भी जो कहो उसका वो पूर्व आकार है, उसका पहला शेप है वो, लेकिन वो उसके अंडे नहीं है, ठीक है ना? सब समूर्छन है। ऐसे चींटियों के भी सफेद सफेद लोग कहते हैं चींटियों के अंडे हैं, वो अंडे नहीं होते उनके, वो सब समूर्छन है, ठीक है? चलो ये हो गया 31 हो गया। चलो भाई देखो आप जितना पूछना हो पूछो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तब तक जाओ कि जा नहीं सकते, मैं तो पूरा करूंगा। हाँ किसका? हाँ तो क्या हुआ? वो सब समूर्छन है, एक इंद्री से चार इंद्री तक के सब जीव समूर्छन होते हैं, ठीक है ना? इनके माता पिता नहीं होते, वातावरण से होते हैं, वातावरण से पैदा होते हैं। चलिए योनियों के भेद बतला रहे हैं। जन्म स्थान, जन्म योनिया, 84 लाख योनिया आपने सुनी है, उन पंचेंद्री भी हो सकते हैं, लेकिन एक से चार तक के तो नियम से समूर्छन ही है। पंचेंद्री भी असंख्यात जीव है समूर्छन। हाँ मनुष्य गति में भी समूर्छन होते हैं, लेकिन अपने जैसे नहीं, गर्भज नहीं, क्योंकि समूर्छन तो अलग है। समूर्छन मनुष्यों का जन्म श्वास के 18वें भाव होता है, निगोदिया, जस्ट लाइक निगोदिया। पंचेंद्री पहली पंचेंद्री, सेकंड ये होते हैं गंदगी में, शरीर में, मनुष्यों के शरीर में होते हैं, मनुष्य स्त्रियों के शरीर में, इस तरह से समूर्छन जीव होते हैं। मनुष्य गति कर्म का उदय है, समूर्छन मनुष्य वही अपर्याप्तक मनुष्य जिनको कहते हैं ना, संत अपर्याप्तक मनुष्य, पर्याप्तक अपर्याप्तक सुने होंगे आपने, वो सब समूर्छन ही है। चलो भाई 32 पर आओ। सचित्त शीत संवृत्ता तेतरा मिश्राश चेतश तत् योनय है, मिश्राश के मिश्राश चेतश तत् योनय है। ये सब योनियों के भेद हैं, 9 तरह के। योनि कहते हैं उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान को योनि कहते हैं। कुछ पूछना बोली? तेजु देवी तो गर्भ ही है, वो कुछ न कुछ ऐसा किया है क्योंकि गर्भ ही उसका कारण है, ठीक है ना? तो क्या प्रोसेस होता है डॉक्टर साहब जानते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो गर्भ जन्म ही है क्योंकि वो रज वीर्य से ही उनका जन्म हुआ है ना? उसको वैसा एटमोस्फियर कृत्रिम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन गर्भ ही जीव है। देखिए सचित्त शीत और संवृत्त, तीन प्रकार कहे पहले, फिर तेतरा माने उनके उल्टे तीन प्रकार कहे, फिर मिश्र फिर उनको मिलाकर के तीन प्रकार हो जाएंगे, उन नौ प्रकार की योनियां हो गई। माने नौ प्लेस ऐसे हैं जिन पर जन्म हो सकता है, नौ प्रकार के। कैसे तो जन्म स्थान 84 लाख होंगे, 84 लाख योनियां हैं, है ना। अभी एक सचित्त, चित्त सहित चेतन योनि, फिर शीत माने ठंडी जगहों पर जो जन्म ले रहे उनके शीत योनि है। संवृत्त, संवृत्त शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ, संवृत्त योनि। फिर सैतर मतलब इससे अपोजिट माने सचित्त का उल्टा, चित्त हो गया, शीत का उल्टा उष्ण हो गया, संवृत्त का उल्टा विवृत्त हो गया माने नहीं ढकी हुई ऐसा। फिर सैकर हो गया ये, फिर मिश्र इसका मतलब एक यो, एक हो गई सचित्त योनि, एक हो गई अचित्त योनि, एक हो गई सचित्त अचित्त, एक हो गई शीत एक उष्ण और एक शीत उष्ण, एक संवृत्त एक विवृत्त और एक संवृत्त विवृत्त। तो इस तरह से ये नौ भेद बतलाए हैं और इनके जब ज्यादा भेद करते हैं तो 84 लाख योनियों के भेद हो जाते हैं। चलिए अब जन्म, गर्भ जन्म को समझा रहे हैं। जन्म तीन प्रकार के कहे थे ना, कौन कौन से, मूर्छन गर्भ और उत्पाद। अब इसमें सबसे पहले गर्भ जन्म, गर्भ जन्म क्या होता है तो पूछ ले, नहीं समझते हो तो पूछ लिया, गर्भ जन्म क्या होता है बोले जरायु जांडज पोता नाम गर्भ है। जरायु जांडज पोता नाम गर्भ है, जरायु जांडज पोता नाम गर्भ है। तीन भेद है इसके लिए, गर्भ जन्म के पुनः तीन भेद। जिन जीवों का गर्भ से जन्म होता है वो तीन तरह के जीव, जरायु जन्म, अंड जन्म और पोत जन्म। तीन नाम लिए, नए नए शब्द है, नहीं सुने होंगे कभी, कोई बात नहीं। जरायु जन्म होता है हम लोगों का, गाय भैंस भेड़ बकरियों का। जरायु कहते हैं झिल्ली, कुछ नाल होती है इस तरह की भी होती है, ये जरायु तो झिल्ली से उस आवरण से लिपटे हुए जन्म लेते हैं, वो जरायु जन्म वाले, ठीक है ना। जरायु जन्म लेने के पश्चात उनको नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, ऊपर से साफ करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या कहेंगे, खून से लथपथ है ऐसा समझ लो आप, जो भी स्थिति है, ये जरायु। दूसरा गर्भ जन्म का भेद है वो है अंडज, अंडे से जिनका जन्म होता हो वो अंडज है। जितने भी पक्षी हैं, मुर्गी हैं और जो भी इस तरह के जीव हो, कई होते हैं कई तरह के जिनके अंडे होते हैं, किसके केकड़ा क्या बोलते हैं, हाँ 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 अंडे होते बिल्कुल, छिपकलियों के भी अंडे होते हैं, छिपकली भी सैनी बनचंद्री है उसके भी अंडे होते हैं, और वो गिरगिट हाँ वो उसी की वो है, वो प्रजाति है इस प्रकार से। ये डायनासोर, डायनासोर भी गर्भ है, गर्भ अंडे होते हैं उसके काफी। फिर पोत, एक तीसरा जन्म है गर्भ जन्म का, तीसरा प्रकार है पोत जन्म। ये पोत जन्म होता है मांसाहारी पशुओं का, ये अंडे से जन्म नहीं लेते, जैसे शेर चीते वगैरह हैं, इनके अंडे से जन्म नहीं है इनका, इनका जरायु जन्म भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो जन्म लेते ही भागते हैं, दौड़ते हैं ऐसे, ये मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनके ऐसे झिल्ली नहीं होती, आवरण नहीं होता इस तरह का, और अंडे भी नहीं होते, उनका पोत जन्म कहा गया है। पैदा होते ही किसी भी प्रकार से उनके बिना आवरण के निकलते हैं, हिरण वगैरह के भी इसी तरह के, आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखे होंगे इस तरह के जन्म होते दौड़ते हैं उसे वो सब। चलो ये गर्भ हो गया, अब उत्पाद तो मैंने बता ही दिया, देव नार का नाम उत्पाद है, 34 नंबर सूत्र, देवों और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। अब कहा जिनके गर्भ से जन्म नहीं होता और जिनके उपपाद जन्म नहीं होता, शेषाणाम सम्मूर्छनम 35 शेषाणाम सम्मूर्छनम, बाकी बचे हुए जितने भी हैं सबके सम्मूर्छन जन्म, या तो उपपाद जन्म होगा नहीं तो देवनारकियों के होगा, या फिर गर्भ से जन्म होंगे तो जरायु अंडकोश जन्म होगा, और ये भी नहीं है और उपपाद जन्म भी नहीं है, शेषाणाम सम्मूर्छन शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। अब इनके शरीर शरीरों की चर्चा करते हैं, अब पूरी शरीरों की चर्चा है। औदारिक वैक्रिय सहारक तेजस कार्मणानी शरीरानी, औदारिक वैक्रिय आहारक, औदारिक वैक्रिय आहारक तैजस कार्मणानी शरीराणी, तैजस कार्मणानी शरीराणी। पांच प्रकार की शरीर होते हैं, शरीर पांच प्रकार के हैं। औदारिक शरीर हमारे, हमारा जो शरीर है तो औदारिक शरीर है, आगे बताएंगे अभी सब तो बतलाएंगे। औदारिक शरीर एक होता है वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीर अदृश्य नहीं होता, चाहे तो अदृश्य हो सकता है, वे चाहे तो जिसको दिखना चाहे उसे दिखे, जिसको नहीं दिखना चाहे उसे नहीं दिखे। आज के करीब 15-17 साल पुरानी बात होगी, हो सकता है 20 साल पुरानी बात हो, मैं जहाँ जिस मंदिर में प्रवचन करता हूँ जौहरी बाजार जयपुर में, तेरापंथी बड़ा मंदिर, उस बड़े मंदिर में मैं प्रवचन कर रहा था और एक वहाँ अम्मा जी आते थे प्रवचन सुनने के लिए, उनका नाम था सुदर्शना जी नाम था उनका। 15 से ज्यादा पुरानी बात होगी तुम्हारे सामने की तो बात नहीं है, तो 18-20 साल पुरानी बात है। वो आते थे, उनका स्वर्गवास हो गया, हमारे पड़ोस में रहते थे, प्रवचन सुनने आते थे बराबर। उनकी डेथ हो गई, हम सब जाकर के आए, शमशान पहुंचा करके आए। दूसरे दिन सभा में प्रवचन खत्म हुआ तो एक और अम्मा जी वहां आते हैं जिनका नाम है तारा देवी जी, वो मेरे से बोले उनसे थी। तो जब प्रवचन खत्म हुआ तो उनको पता लगा कि उनकी डेथ हो गई थी कल, जैसे ही पता लगा तो फर्स्ट इंप्रेशन उनका ये था, वो मेरे बगल में बैठे थे अभी, आप कह रहे हो कल डेथ हुई, वो तो मेरे बगल में बैठे थे और बगल में बैठे थे और उसमें उन्होंने मेरे से कही है कि कल आप नहीं आए थे क्या, आप हमें बात हुई है, ये क्यों नहीं हो सकता है? ये आ जाते हैं कहीं भी जाकर के, देवगति के जीव होते हैं ना, वैक्रिय शरीर होता है, क्षण मात्र में जन्म हो जाता है, लंबा समय नहीं लगता है, 1-2-3 समय में जाकर के जन्म हो गया, अंतर्मुख में वहां से वापस लौट करके आ गए, वापस रूप बना सकते हैं। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ वैक्रिय शरीर वाले जिसको दिखना चाहे उसको दिखे और बाकी औरों को नहीं दिखे, ऐसा भी हो जाता है। ये सच्ची घटना है हमारे वहां की, बहुत चमत्कारिक मंदिर है, कभी आओ तो करना दर्शन, बहुत घटनाएं हैं, प्रसंग बनेगा तो कभी बीच बीच में सुनाऊंगा, ये तो अभी एक सुनाया है। भूत नहीं है लेकिन वहां ये सोच करके आप आओ ही नहीं, ये भूत चक्कर होते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। देखिए पांच हो गए, औदारिक वैक्रिय, वैक्रिय होता है स्पेशल शरीर होता है, सूक्ष्म भी होता है, आगे सब चर्चाएं वही चलने वाली है। तीसरे प्रकार का शरीर है आहारक, आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है, एक पुतला होता है मस्तक से निकलता है, अभी करेंगे चर्चा। एक होता है तेजस शरीर, तेजस शरीर में तेज प्रदान करने का काम करता है, जितना तेज है ना फेस पर चेहरे पर, उष्णता है गर्मी है, ये सब तेजस का काम है, तेजस शरीर। और एक पांचवा है कार्मण शरीर, पांचवे का नाम क्या है, कारमण, कारमान नहीं है, कारमण शरीर, ठीक है ना। पांच शरीर हो गए बेटा, कौन कौन से हैं? नेत्रिय, फिर आहारक, तेजस और कारमण। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था बच्चों को थोड़े समय पहले, तो कॉपी आई मेरे पास में जज करके, जजमेंट के लिए। तो एक बच्चे ने लिखा औदारिक शरीर, वैद्य शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। कार्बन मैंने गलत लिखा है इसने। तो फिर जब बच्चे को बुला करके पूछा तो उसने सही से ही बताया, मैंने कहा लिखा तो कार्बन है, बोले वो कार्बन कॉपी होती है ना। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो क्रिया करते हैं, उन सब की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है, उसे कार्बन शरीर कहते हैं। क्या वो कार्बन कॉपी है, समझ रहे हैं आप? वो डुप्लीकेट है, जो भी है सब कुछ लिखा जा रहा है। अपने यहाँ जैन परंपरा में ऐसे कोई चित्रगुप्त नहीं है, ऊपर बैठे बैठे हिसाब किताब लिखते होंगे, सब खुद ही लिख रहे हैं अपन। हर समय के भाव, एवरी मोमेंट एवरी एक्शन, जो कुछ भी किया जा रहा है सबकी मुकुंद भाई क्या हो रही है? डुप्लीकेट तैयार हो रही है। उस कॉपी का नाम क्या है? शास्त्रों की भाषा में कारमण, कार्बन शरीर, और बोलचाल की भाषा में कार्बन डुप्लीकेट। चलो इन पांचों के बारे में कहते हैं परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। माने ये पांचों शरीर एक की तुलना में दूसरा, उसकी तुलना में उसके आगे वाला, उसकी तुलना में उसके आगे वाला, सूक्ष्म 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 होते गए। अपना औदारिक शरीर स्थूल है, टकराता है, हिंसा होती है, दीवार से टकराता है। वैक्रिय शरीर दीवार में से भी निकल जाता है, फुल एयर टाइट हो उसमें से भी निकल जाए, वज्र की दीवार के बीच में से भी निकल जाए वैक्रिय शरीर। औदारिक की तुलना में वैक्रिय सूक्ष्म हो गया, ठीक है। वैक्रिय की तुलना में आहारक और सूक्ष्म हो गया, तेजस और सूक्ष्म है, और कारमान शरीर सबसे सूक्ष्म है। अच्छा, जैसे ही हमने कहा ये पांचों शरीर उत्तर उत्तर परम परम सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, शिष्य ने प्रश्न किया, तो फिर इसका मतलब परमाणु कम कम होते जाते होंगे तभी सूक्ष्म होता होगा। नहीं, प्रदेश तो असंख्य गुणम, चलो प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त तेजसात, प्रदेश तो, प्रदेश मतलब परमाणु, असंख्य गुणम, असंख्यात गुणा होते हैं प्राप्त तेजसात, तेजस के पहले पहले तक। इसका मतलब औदारिक शरीर से असंख्यात गुने ज्यादा परमाणु वैक्रिय शरीर में होते हैं, वैक्रिय शरीर से असंख्यात गुने ज्यादा परमाणु आहारक शरीर में होते हैं, और फिर इस प्राप्त तेजस, तेजस के पहले पहले कह दिया, फिर आगे सूत्र दिया अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। इसके बाद क्या होता है कि आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणे परमाणु है, और तेजस शरीर से कारमण शरीर में अनंत गुणे परमाणु है। क्या परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, कैसा स्वरूप है। इतना ही नहीं, ये अनंत गुणे हो गए कारमण शरीर और तेजस शरीर, अनंत अनंत परमाणु है, कर्म परमाणु आत्मा के साथ में चिपके हुए, उसके बावजूद भी ये बात कहते हैं अप्रतिघाते, टकराते नहीं है। तेजस और कारमान शरीर भले ही अनंत परमाणु हो तेजस और कारमान शरीर में, उसके बावजूद भी तेजस कारमान शरीर किसी से टकराते नहीं है। यहाँ से कहीं भी जाना हो, बड़े बड़े पहाड़ आ जाएं, पर्वत आ जाएं, नदियां सरोवर आ जाएं, आग जली हुई हो, भयंकर आग लगी हुई हो, वज्र के पटल पड़े हुए हो, बार करके निकल जाते हैं सीधे तेजस कारमान शरीर के साथ में। देखो ये आगे वाला सूत्र, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, क्या कह रहे हैं? तेजस और कारमान शरीर का संबंध अनादि काल से है। तेजस कारमान शरीर कब से है? अनादि काल से। अनादि काल से आज तक शरीर कभी छूटा नहीं है हमारा। एक बार यदि शरीर छूट जाता तो फिर ये जीव मुक्त हो जाता। शरीर छूटा ही नहीं है कभी भी। औदारिक शरीर तो छूटा, लेकिन कारमान तेजस शरीर कभी नहीं छूटा। तो च क्यों लगाया है? अनादि संबंधित च इसलिए लगाया है कि इन शरीरों का संबंध अनादि से है और तादि भी है। तादि कैसे? कि कर्म कोई भी हो अनादि काल से आत्मा के साथ में बंधे हुए नहीं है। क्या कैसे बात कर रहे? हमारे साथ बंधे हुए कोई भी कर्म, यदि उन परमाणुओं की रिसर्च की जाए कर्म परमाणुओं की, तो सबसे पुराना कर्म परमाणु मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी ताकत पुराना होगा। इससे पुराना कोई नहीं होगा। तो फिर क्या होते हैं? परमाणु बदल जाते हैं, शरीर मेंटेन रहता है। तो यदि परंपरा की दृष्टि से देखो तो कारमान शरीर अनादि से है, और कर्म बदलने की दृष्टि से देखो तो पादि भी है। समझ में आ रही है क्या बातें आपके? कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी आ रही है क्या डॉक्टर साहब की? आ रही है क्या थोड़ी सी? आ रही है ना। चलो सर्वस्य, हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आपका औदारिक शरीर टकरा रहा है। मतलब ऐसे टाइम अपने साथ में तीन शरीर हैं। ये बात 43 में आ रही है अभी, 43 में। या मैं सुनूंगा, मजाक जो कर रहे हैं बच्चे मैं सुनूंगा। क्या सुनना? सर्वस्य, सर्वस्य, सर्वस्य माने सबके, सर्वस्य माने सबके। सबके क्या मतलब? बोले ये जो दो शरीर थे ना तेजस और कारमान, सबके एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, तीन इंद्रिय, देव नारकी मनुष्य त्रिय, सब सबके सर्वस्व तेजस कारमान। पर सम्मूर्छन, हाँ 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 तो अभी मैं ये बात कह रहा हूँ, आपने साइंस कितने टाइम पढ़ी है? बहुत पढ़ी है मुझे ऐसा लगता है। कितने कितने साल पढ़ी है आपने? 10-12 साल पढ़ी होगी। 10-12 साल पढ़ी है मेरे 10-12 प्रवचन तो सुन दो। नहीं सुनते हमने जो साइंस पढ़ी है 10-12 साल तक हमारे माइंड में फीडिंग होती रही, वो हमारे माइंड में। अब वो जितनी फीडिंग, और वहां हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी हम ये कह रहे हैं ये सम्मूर्छन होते हैं, ये बात अपने दिमाग में बैठा कर वहां उनसे करो तर्क। हमने तो ये सुना है सम्मूर्छन होते हैं, आप कैसे कहते हो ऐसा होता है? आप समझ रहे हैं? ये भी साइंस है। जैन दर्शन भी, और ये साइंस बहुत डेवलप्ड साइंस है जैन दर्शन की साइंस, गजब है। मतलब मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता हूँ आपसे। मैं कल चलाऊंगा तीसरा अध्याय, आज दूसरा पूरा होगा अभी, कल तीसरा अध्याय चलाऊंगा, थर्ड चैप्टर आप लोगों के पास है सर? कल थर्ड चलाऊंगा और बोर्ड पे चला भी सकता हूँ और प्रोजेक्टर पे भी चला सकता हूँ, और लेकिन एक ही पीरियड में खत्म करूंगा उसको, थर्ड को। और कल पहला वाला जो पीरियड होगा उस एक पीरियड में थर्ड खत्म करूंगा, और कल जो दूसरा पीरियड होगा उसमें फोर्थ खत्म करूंगा। कोई बात नहीं, आराम से होगा। समझ में नहीं आया यदि आप लोगों को तो फिर मैं वापस आऊंगा, लेकिन ये घबराना मत, मैं वापस आना है इसलिए बिना समझाए नहीं जाऊंगा, पूरा समझा के जाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं। चलो यहाँ आ जाओ। मैं ये कह रहा था आप साइंस की बात जो कर रहे थे ना, क्योंकि अभी तो कुछ प्रश्न नहीं उठते, तीसरे अध्याय में तो बहुत कदम कदम के प्रश्न थे, तीसरे और चौथे अध्याय में कल जो चर्चाएं चलेगी उसमें तो कहेंगे सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है, उसमें तो चर्चाएं और अलग अलग तरह की होगी, स्वर्गों की चर्चा होगी, नरकों की चर्चा होगी, साइंस तो कुछ मानता ही नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन साइंटिस्ट लोगों से, उनका क्या कहना है आत्मा के बारे में? कुछ नहीं। तो आपने यहाँ तो प्रश्न कर लिया, अब ये आत्मा पर मानते हैं कि नहीं आप? आप कैसे मानते हैं जब साइंस तो नहीं मानती है तो आपको नहीं मानना चाहिए, साइंस नहीं मानती है तो आत्मा को नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर्स मानते हैं कि आत्मा को? नहीं, आप तो मानते हैं, डॉक्टर नहीं मानते, तो आप डॉक्टर नहीं है, सब डॉक्टर नहीं मानते। मतलब आत्मा है या नहीं है, आत्मा का अस्तित्व डॉक्टर्स नहीं मानते, साइंटिस्ट नहीं मानते। अरे, किसी के मानने और नहीं मानने से वस्तु का स्वरूप बदल नहीं जाता, एक हो त्रण काल मां, ये परमार्थ का मार्ग है, ये त्रिकाल में एक स्वरूप है, ये कभी नहीं बदलता है, अनादिकाल पहले भी यही स्वरूप था, आदिनाथ भगवान के काल में भी यही स्वरूप था, हमारे जमाने में भी यही स्वरूप है, और छठे काल में भी वस्तु का स्वरूप बदल नहीं जाएगा। और विज्ञान उसे कहते हैं जो प्रति समय बदलता रहे। हाँ, या अच्छा, विज्ञान यदि ये कह दे, वे कोई साइंटिस्ट यदि ये बात कह दे ये फाइनल है, इसका मतलब वो साइंटिस्ट नहीं। हाँ, मैं बहुत साइंटिस्ट हैं जिनसे मैं मिला हूँ और मैं जानता हूँ, परिचय है। रिसर्च वो सर्च कभी खत्म नहीं होती है, और खत्म हो गई तो फिर साइंस क्या है? मैं विज्ञान को झूठा नहीं कह रहा, नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं विज्ञान को झूठा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विज्ञान द्वारा कही गई बातें सत्य नहीं है। मेरा एक आर्टिकल बहुत फेमस हुआ, बहुत मैगजीन वालों ने छापा, जैन दर्शन और साइंस, उपगल द्रव्य और साइंस, इसके ऊपर था। तो मैंने स्टार्टिंग ही यहां से की कि विज्ञान जो बातें कहता है वो सापेक्ष सत्य है, और दर्शन जो बातें कहता है ये पारमार्थिक सत्य है। उनकी जो बातें हैं वे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सत्य हैं, और ये जो बातें हैं इनको बतलाने वालों के पास कोई साधन नहीं थे, फिर भी इन्होंने क्या गजब की बातें बताई है। डेवलप्ड साइंस किसका? जिस व्यक्ति को बिना इंस्ट्रूमेंट के काम न चल सके उसका, या जो वन खंड में गुफा में आंख बंद करके बैठा है और बता दे रहे ऐसे, किसका साइंस डेवलप है? कैसा दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञानियों की बात है। चलिए 43। हाँ,
सबसे जितना भी आयुर्वेद का रिसर्च है, तो जितने भी उनके शास्त्र लिखे गए, में कोई किसी की पौधा उनके सामने आया और इसमें उनके गुणधर्म
आयुर्वेद मैथमेटिक्स साइंस क्या और जिस जिस सब्जेक्ट की आप बात करो सारे सब्जेक्ट यहाँ से निकले सारे सब्जेक्ट जितनी रिसर्च वर्तमान में हो रही है टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप हो रही है ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ शास्त्रों में। मैं पांचवा अध्याय अब चांस की बात है कि अभी नहीं ले पा रहा हूँ मैं पांचवा अध्याय पढ़ाता हूँ तो बहुत ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ अब बताऊंगा अब आपको इंतजार करना पड़ेगा क्या करें नहीं सच में क्योंकि पूरा पांचवा अध्याय एटॉमिक थ्योरी है परमाणु परमाणु थ्योरी है पूरी परमाणुओं की किस तरह से होता है किस तरह से नई नई रिसर्च होती है परमाणुओं की गति आवृत्ति उनका परिणाम उनके स्वरूप औद्योगिक चर्चाएं ये सारे पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन करने वाली चर्चाएं उद्गल धर्म धर्म आकाश काल की चर्चा करने वाले और उनमें ऐसे ऐसे सिद्धांत निकल करके सामने आते हैं पूरी की पूरी साइंस खड़ी हो जाती है। ये जो साइंस दिखती है जिसकी महिमा हमारे को आती है तो हमारे को तो नहीं आती है लेकिन आपको यदि साइंस की महिमा आती है तो आप एक बार ये गहराई से पांचवें अध्याय की टीका को अलग अलग आधारों से पढ़ो लेकिन क्या पढ़ना है सच में तो आत्मा को पढ़ो तब पढ़िए अलग अलग आत्मा को पढ़ लो तो पढ़ने में आ जाता है। आप 53 पढ़े सूत्र खत्म करना है ना 43 तदा दिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य तद आदिनी उनको शुरू करके किनको तेजस कारमान की चल रही थी ना चर्चा तेजस और कारमान को शुरू करके भाज्यानी विभाजित करते हुए माने दो से शुरू करो तेजस कारमान से शुरू करो दो फिर किसी के तीन फिर युगपद एक ही जीव के एकस्मिन एक ही जीव के युगपद एट ए टाइम एक साथ चतुर्भ्य चार शरीर भी हो सकते हैं किसी जीव के दो शरीर किसी के तीन शरीर और किसी के चार शरीर भी हो सकते हैं। कैसे दो शरीर किसके हो सकते हैं आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं जल्दी से बताओ कौन बताएगा विग्रह गति में किसने बताया रमेश भाई वो टेक्नोलॉजी वाले हैं भाई है? क्या कहा विग्रह गति में दो ही शरीर होते तेजस और कारमान विग्रह गति तीन हो तो अब अपने अपने तीन शरीर हैं एक तो औदारिक ये जो दिख रही है बॉडी एक है इसमें तेज तेजस और एक है कर्म कार्मिक बॉडी है अंदर में वो कर्म शरीर है कार्मन शरीर है तो तीन हो गए। अच्छा और कुछ हो सकते हैं जिनके तीन होते हैं देवों के भी तीन होते हैं नारकियों के भी तीन होते हैं प्रियंशियों के भी तीन होते हैं कैसे तेजस कारमान तो होते ही है इसके अलावा एक और होगा वैक्रियक होगा क्या आरक होगा अभी बताएंगे चलो आगे बढ़ो। निरुपभोग मंत्यम निरुपभोग मंत्यम निरुपभोग मंत्यम मतलब अंत्यम माने अंत के शरीर तेजस और कारमण ई शरीर या अंत अंत वाला तो कारमण शरीर निरुपभोग उपभोग से रहित होता है माने वो भोगने में नहीं आता उस शरीर का कोई उपभोग नहीं होता उस शरीर का कोई उपयोग नहीं होता कारमन शरीर का। चलो किसके कौन सा शरीर होता है कौन से जीवों के कौन सा शरीर है हमारे शरीर को कौन सा शरीर कहें इन पांच में से आप कह रहे हैं तो महापौनी आचार्य से सुनिए ये कह रहे हैं गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम क्या हुआ गर्भ समूर्छनजम आद्यम, माने गर्भ जन्म वाले और समूर्छन जन्म वाले, इनके कौन सा शरीर होता है? आद्यम। आद्यम मतलब शुरू वाला शरीर, औदारिक। आद्यम मतलब शुरू वाला। तो जिन जीवों के गर्भ जन्म है, मनुष्य त्रियंशु में होता है या समूर्छन मनुष्य त्रियंशु में होते, इनके औदारिक शरीर होता है। कहने का मतलब मनुष्यों और क्रियंशियों के औदारिक शरीर हो गया, ठीक है। औपाधिकम व्यक्रियकम, अब औपाधिक कौन थे? देव और नारकी, उनके कौन सा शरीर है? व्यक्रियकम, उनके व्यक्रियक शरीर है। मनुष्य त्रियंशियों के औदारिक शरीर है, देवों और नारकियों के व्यक्रियक शरीर है। और सर्वस्य, ये पीछे कहा था तेजस और कारमान तो सबके, तेजस और कारमान तो सबके हैं। इसका मतलब मनुष्यों के भी तीन शरीर हो गए, त्रियंशियों के भी तीन शरीर हो गए, देवों के भी तीन हो गए और नारकियों के भी तीन हो गए। इनमें से नारकियों के तीन कौन कौन से हैं? वैक्रिय तेजस कारमान। देवों के तीन कौन से हैं? वैक्रिय तेजस कारमान। त्रियंशियों के तीन कौन से हैं? औदारिक तेजस कारमान। चींटियों के औदारिक तेजस कारमान। और चिड़ियाओं के और पेड़ पौधों के औदारिक तेजस कारमान, ठीक है। और आर्य के औदारिक तेजस कारमान। और मम्मी के फिर बेटा, चलो ठीक है। औपाधिकम व्यक्रियकम हो गया, मतलब सबके तीन हो गए। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, ये लब्धि माने होते हैं रिद्धि। कल आपने पूछा लब्धि, प्रत्यय मतलब हेतु, च तो ये कह रहे हैं ये जो पीछे वैक्रिय शरीर की जितनी चर्चा चली थी, ये वैक्रिय शरीर रिद्धि के निमित्त से भी हो जाता है, रिद्धि से भी वैक्रिय शरीर हो जाता है। हाँ, रिद्धि से तो किसके होगा? जैसे चक्रवर्तियों के, जैसे नारायण प्रतिनारायण वगैरह के, ऐसी रिद्धियां होती है, डुप्लीकेट शरीर बना लेते हैं रिद्धि से, तो वो तो वैक्रिय जैसा हो जाता है, विक्रिया से बनाते हैं, है ना। तो ये वैक्रिय कह दिए इसको लब्धि प्रत्ययम के कहकर के। फिर का तेजसमपि, मतलब तेजस भी, तेजस शरीर भी रिद्धि के प्रभाव से हो जाता है। कैसा तेजस शरीर? देखो, एक तो हो गया जनरल, जनरल तेजस शरीर, वो जनरल तेजस शरीर तो सबके, लेकिन अब ये रिद्धि वाला तेजस है, ये दो तरह का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। सुना? पुतला पुतला होता है, सीधे सीधे कंधे से निकलता है, शुभ तेजस। एक अशुभ तेजस होता है, वो बाएं कंधे से निकलता है। तेजस शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों के होगा और 12 योजन तक कार्य करता है वो शरीर। अशुभ तेजस शरीर लेफ्ट साइड से निकला है, बिलाव के आकार का होता है, सिंदूर के कलर का होता है रेड, क्रोध आदि के निमित्त से निकलता है और बाएं कंधे से निकलकर 12 योजन तक जाकर चारों तरफ घूमकर सबको भस्म करके, आग लगा करके जला के आ जाता है, भस्म करके आ जाता है। तेजस शरीर, तेज अशुभ तेजस, हाँ तेजोलेश्वर ऐसा ही। अब और दूसरा शुभ तेजस, अभी अभी आ रहा है, अभी तो तेजस की बात चल रही। फिर दूसरे का नाम है शुभ तेजस। शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है, कल्याण के लिए होता है, भलाई के लिए होता है, नगर में आस पास में चारों तरफ महामारी फैल गई हो, प्लेग फैल गया हो, स्वाइन फ्लू फैल गया हो, चिकनगुनिया और ऐसी जो बीमारियां हैं, ये सब ऐसे लोग मर रहे हैं, कोई वायरस फैल गया इस तरह का, जान जा रही है लोगों की, ऐसे समय में वो पुतला करुणा बुद्धि से मुनिराजों के छठे गुण स्थान के काल में निकलता है, चारों तरफ राउंड मार करके आता है और वो महामारी दूर हो जाती है। शुभ तेजस, शुभ तेजस पुतले का काम हो गए। तेजस के रिश तेजस मती क्या नींद आ रही है सबके? नहीं आ रही हो तो मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं आ रही है किसी को भी? नहीं नहीं किसी को भी नहीं आ रही है। हाँ मैं कैसे ही बोल रहा था। तेजस मफी मतलब तेजस शरीर भी रिद्धि के कारण होता है। आगे बढ़ो, कौन से आगे? 49 शुभम विशुद्धम अव्याघाती, शुभम विशुद्धम अव्याघाती क्या हारकम प्रमत्त संयतस्येव। शुभम विशुद्धम, शुभ है विशुद्ध है अव्याघाती है, इसका हमें टकराता नहीं है क्या, और आहारकम आहारक शरीर है प्रमत्त संयतस्येव। प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान का नाम है, मतलब ये भी मुनिराजों के होता है। मुनिराजों के एक और शरीर होता है जिसका नाम है आहारक, आहारक शरीर। अशुभ तेजस यहाँ से निकलता था लेफ्ट से, शुभ तेजस दाहिने कंधे से निकलता था, आहारक शरीर मस्तक से निकलता है, मस्तक से निकलता है। एक हाथ प्रमाण होता है, पुरुषाकार होता है, सफेद होता है और शंका के समाधान के लिए या तीर्थ वंदना के विकल्प से निकलता है और अंतर्मुख के लिए जाकर तीर्थंकर केवली श्रुत केवली जहां मिले वहां जाकर शंका का समाधान करके तीर्थ वंदना करके वापस लौट करके आ जाता है आहारक शरीर। ठीक है, अंतर में कुंड कुंडाचार्य तो औदारिक से गए थे, औदारिक से गए थे, हाँ 8 दिन के लिए। चलिए यहाँ तक हो गया आहारक शरीर तक तो समझ में आ गया। एक तेजस शरीर दो तरह का हो गया, एक तेज प्रदान करने वाला, दूसरा तेजस शरीर हो गया निकलने वाला। शास्त्रों में दो नाम लिखे हैं इनके, निस्तरण तेजस और अनिस्तरण तेजस। अनिस्तरण तेजस, निस्तरण तेजस के दो वेद हैं शुभ अशुभ। निस्तरण निकलने वाला, अनिस्तरण तेजस सर्व सर्व संसारी है ना। एक हो गया आहारक, आहारक वाला जो आहारक सेपरेट शरीर है। चलो नारक तमूर्चिनो नपुंसकानी, नारक तमूर्चिनो नपुंसकानी, नारकी जीव और समूर्चन जीव, क्या था? नारकी जीव और समूर्चन जीव नपुंसक होते हैं। इसका मतलब मक्खियां और आपके बी या वो अलग अलग भेद बतलाते हैं उनके नर मादा और क्या क्या करते हैं ये साइंस में, लेकिन ये कह रहे हैं नारक और समूर्चन सब जीव नपुंसकानी नपुंसक होते हैं। ठीक है, न देवाहा देवों में नपुंसक नहीं होते, शेषा त्रिवेदाहा। अब नारकी जीव और समूर्चन जीव तो नपुंसक हो गए, नारकी और समूर्चन देवों में स्त्री और पुरुष हो गए हैं। अब बाकी जो बच गए हैं उनमें तीनों वेद होते हैं, शेषा त्रिवेदाहा, बाकी के तीनों वेद होते हैं अंतिम। अब तो ठीक है बराबर है? अब तो लग रहा होगा कि अपने तो गाड़ी पहुंच गई, एक्सप्रेस तो नहीं। अरे ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है 53। औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्येय वर्षायुषो अनपवर्ती आयुष्य है, अनपवर्ती आयुष्य है। औपाधिक चरम उत्तम देह असंख्येय वर्ष आयुष्य हो, अनपवर्ती आयुष्य है। देखिए अकाल मृत्यु के संदर्भ में इस सूत्र को हमेशा प्रस्तुत किया जाता है। अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है, लोगों की जिज्ञासा शंका इस प्रकार की होती है, उसके समाधान में यहाँ कह रहे हैं कि अकाल तो होती नहीं है, होता तो काल ही है। अकाल कही जाती है, केवल ज्ञानियों के ज्ञान के आधार पर तो अकाल है नहीं क्या, लेकिन आयु कर्म में अपवर्तन होता है। किन के वो कंडीशन इसमें बताइए। औपाधिक, औपाधिक कौन है? उपाध जन्म वाले, उपाध जन्म देवों और नारकियों का उपाध जन्म होता है। तो औपाधिकम मतलब देव नारकी। चरम उत्तम देहा मतलब चरम शरीरी और उत्तम देह वाले, चरम शरीरी और उत्तम देह वाले। चरम शरीरी कहते हैं उसी भाव से मोक्ष जाने वालों का शरीर, अंतिम शरीर को चरम शरीर कहते हैं। जिन जीवों को मोक्ष जाना हो उनका शरीर क्या कहलाता है? चरम शरीरी है। चरम शरीरी कौन है? जैसे किसी के बारे में कहा भरत बाहुबली लड़ रहे थे दोनों, पता है उनकी सेना वालों ने क्या सोचा, सेनापतियों ने, जब भरत जी का चक्र अयोध्या में प्रवेश नहीं किया और मालूम चला क्यों नहीं किया, तो बोले बाहुबली ने आधीनता स्वीकार नहीं करी, अभी संदेश भेजा बाहुबली के पास में, मान जाओ तैयार हो जाओ, नहीं माने नहीं अजय लड़ने के लिए। तो सेनापति बहुत होशियार थे महेंद्र भाई, सेनापति इतने होशियार थे, उन्होंने क्या सोचा, यार ये दोनों भाई लड़ने को तैयार हो रहे हैं क्या, ये दोनों तो चरम शरीरी है, इनका तो कुछ होगा नहीं, ये तो मोक्ष जाएंगे, मरेंगे हम तो क्या करें। बोलो बोलो, अच्छा यही है कि इन दोनों को ही लगाओ आपस में। इसलिए फिर उनके योजना से, मंत्रियों की समझदारी से वो सेनाओं में युद्ध नहीं हुआ, भरत और बाहुबली का आपस में युद्ध हुआ, जैसे जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र युद्ध कहकर के पुकारा गया क्या। और वो भी जो युद्ध था वो युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था, वो युद्ध भी उनकी समझदारी थी। वो समझदारी, तीनों युद्ध इस प्रकार के चुने गए जिन युद्धों के माध्यम से उनमें आपस में झगड़ा मिट जाए। जैसे जल युद्ध कहते हैं ना, गुस्सा बहुत तेज आ रहा हो तो ठंडा पानी पी लो, हैं? तो ठंडा पानी नहीं, इनको तो पानी में उतार दो तो ठंडे होंगे थोड़े से, झगड़ा मिटेगा। तो जल युद्ध की बात कही, मल युद्ध की बात कही, दोनों भाई आपस में, भाई भाई आखिर कौन है, एक दूसरे से गले मिलेंगे, हाथ से हाथ पकड़ करके लगेंगे तो शायद प्रेम भाव उमड़ जाए। और नेत्र युद्ध, आपस में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे क्या, तो शायद झगड़ा मिट जाए। इसलिए ये तीन युद्ध चुने गए थे। खैर मुझे वो नहीं समझाना, मुझे तो ये कहना है चरम शरीरी थे माने उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। फिर क्या कहा, उत्तम देह वाले कौन होते हैं? उत्तम देह वाले होते हैं 63 शलाका पुरुषों के शरीर, वो उत्तम देह वाले होते हैं। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव और तीर्थंकर, ये सब उत्तम देह है। और असंख्येय वर्ष आयुष्य है, असंख्यात वर्षों की आयु वाले ये कौन होते हैं? भोग भूमि वाले, क्योंकि औपाधिकम देवनार की पाई है, उपाध औपाधिक कहकर के। अब ये कह रहे हैं असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है वो कौन हुए? असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है भोग भूमि वाले, भोग भूमि वाले मनुष्य। ये कह रहे हैं अन अपवर्त आयुष्य है, इनकी आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। इनकी आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। इसका मतलब इनके इन जीवों में आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं होती, मर नहीं सकते। जितनी आयु लाए हैं उतनी पूरी भोगनी पड़ेगी, एक्सीडेंट नहीं होता उनका। देव लोगों में दुख तो बहुत है लेकिन मरना चाहे तो मर नहीं सकते। अनगिनती बातें हैं, बहुत तरह के विषय हैं, बहुत तरह की चर्चाएं हैं। मैंने पहले भी आपको ये बात कही है, तत्वार सूत्र पूरे ग्रंथ को, सारे सूत्रों को जिसने गहराई से समझ लिया, न मालूम कितने विषय, कितने टॉपिक, कितने सब्जेक्ट सब क्लियर हो जाते हैं माइंड में। ये पूरे जैन दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया है ये महान शास्त्र। इस महान शास्त्र के दो अध्यायों को हमने यहाँ पूर्ण किया है, कल तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना, और समझने की भावना हो देखना जिसकी जैसी भावना हो।